तुझको सहारा देने वाले जितने सही तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिन कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो देना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिन कहे तेरा शुक्रिया। भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया को हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया को हम, जब से हुआ है हमसे तेरा करम हो के जिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिन कहे तेरा शुक्रिया।
ओम शांति। आज फिर से हम विशेष बाबा मिलन मनाएंगे, तीसरा टर्न इस सीजन का। अव्यक्त में भी अव्यक्त का जो सिलसिला चल रहा है, अव्यक्त अनुभूति करने के लिए स्थिति भी उतनी अव्यक्त होना जरूरी है, तभी हम प्रभु प्यार का अनुभव कर सकते हैं। शाम को फिर से महफिल सजेगी, शम्मा और परवाने एकत्रित होंगे, फिर बहुत सारी दिल की रुरुआन होगी, मन के अंदर ही अंदर कई तरह के संकल्प होंगे। इस संसार में कितनी सारी ब्राह्मण आत्माएं उस समय ऐसे ऊंच संकल्पों के साथ एकत्रित होंगी, और वो फिर वो जो एटमॉस्फेयर है, वो वातावरण है, वो फिर से कितना शक्तिशाली हो जाएगा। वैसे तो हम बाबा से मिलन मनाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जब इतनी सारी पवित्र आत्माओं का समूह एकत्रित होता है, संगठित रूप से, वो जो वातावरण है उसका एक अपना महत्व होता है। भले हम परिस्थितियों अनुसार बड़े संगठन के अंदर नहीं पहुंच पाते कोई, लेकिन जिस भी स्थान पर रहते हैं, चाहे कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, अपने कर्म क्षेत्र पर हैं, घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस समय को हम इस मधुबन के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही सफल करने का अगर संकल्प ले लें तो बहुत सारी शक्तियों का हमारे अंदर स्टॉक जमा हो जाता है, जो एक मन में रहता है कि हम तो दूर हैं, इस प्रकार का भाव फिर समाप्त हो जाता है। बाबा जहाँ है, जो है, जैसे है, वहाँ उसको अनुभव करा देता है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें हमारी मनोस्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए। बाबा तो पहले से कई बार कह चुके हैं, भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं कि आगे चलकर मिलन की विधि बदलती रहेगी, वृद्धि के साथ साथ विधि में परिवर्तन जरूर होगा, जो कि हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि कैसे कैसे बाबा मिलन के भी बदलाव आते जा रहे हैं। लेकिन बाबा हर परिस्थिति में हर ब्राह्मण आत्मा का सहारे दाता बनकर जीवन में जो अनेक दुख दर्द थे, कैसे उनको हर रहा है, दूर कर रहा है। आज भी बाबा ने कहा ना, तुम्हारा बहुत समय किस में चला गया, दुख सहन करने में चला गया। अभी बाप आए हैं तुम्हें सतो प्रधान बनाने, बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। तो जो गीत सुना, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, तो सचमुच हमारे दिल से कितना शुक्रिया निकलता है उसके प्रति, कितने उपकार किए हैं उसने हमारे ऊपर। अगर वो उपकार भी हमारे मन में स्मृति में रहते हैं तो भी हमारे इस जीवन की जो रूहानी यात्रा है बहुत सुखद होती है। वैसे भी देखा होगा, ब्राह्मण बनने से पहले जो भी भक्ति हम भगवान की करते थे किसी न किसी रूप से, तो बहुत सारी परिस्थितियों में हमको बचाया उसने, विकारों के दलदल में गिरने से बचाया होगा, क्योंकि उसको इतनी बड़ी सृष्टि का नव निर्माण करना है, तो उस नव निर्माण के लिए उसको ऐसी पवित्र आत्माओं का संगठन चाहिए, बल चाहिए, क्योंकि वो तो गुप्त है, और इतने बड़े गुप्त कार्य को साकार मुहूर्त साकार करने के लिए, साकार रूप देने के लिए साकार में आत्माओं का सहयोग जरूरी है, क्योंकि उसको हमारा भाग्य बनाना है, भाग्य विधाता बाप है वो। तो कदम कदम पर भगवान ने हम सबको बहुत सहारा दिया है। तो अभी हमारा जो मन है वो शिकायतों से भरा नहीं होना चाहिए, बल्कि शुक्रिया से भरा होना चाहिए। हर कदम बाप को शुक्रिया करते रहे। वैसे शुक्रिया तो क्या करेंगे, इतने बड़े उपकार हैं उसके, लेकिन उसको शुक्रिया करने के लिए आज का स्लोगन बहुत सुंदर है। कैसे शुक्रिया करेंगे, अपने श्रेष्ठ जीवन को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप प्रत्यक्ष होगा अपने श्रेष्ठ जीवन से, यही उसका शुक्रिया है। हमारे श्रेष्ठ जीवन का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वही बाप को प्रत्यक्ष करने का आधार को हो, प्रमाण है या विधि है, तरीका है। तो हमारे जीवन में कितनी श्रेष्ठता भर दी है उसने, इसलिए मनुष्यों का संसार में देखेंगे सुख का कम चिंतन करते हैं, दुख का चिंतन बहुत करते हैं। अगर 100 लोगों ने सुख दिया है और एक व्यक्ति ने दुख दिया है तो सुख भूल जाएगा उसको, सारे दिन दुख का ही चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि सुख दुख वो तो हमारे द्वारा ही क्रिएट किए गए हुए हैं। सामने वाला जो दे रहा है वो तो हमारे ही जो हमने बीज बोया है उसका फल के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो अधिकतर समय मनुष्य का जो वो दुख के चिंतन में जाता रहता है, लेकिन बाबा ने हमको कदम कदम पर सोचने का तरीका बताया है कैसे दुख को सुख में परिवर्तन करना है। इतना सुंदर तरीका बताकर हमारे जीवन को कितना श्रेष्ठ ऊंच बना दिया है। ऐसा नहीं है कि भगवान का बनने के बाद हमारे जीवन में कोई परिस्थिति ना आए, लेकिन परिस्थितियों को भी स्वीकार करते हुए हमारी स्थिति को परिपक्व बनाने का साधन बना दिया। परिस्थितियां जैसे एक खेल के समान अनुभव होती हैं। बहुत सारे ब्राह्मणों का ऐसे अनुभव है कि जब से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियां एक से बढ़कर जो भक्ति मार्ग में भी नहीं आती थी वो ज्ञान मार्ग में आना चालू हुई। लेकिन जब भगवान का साथ है, हाथ है उसका पकड़ा हुआ है, उसका ज्ञान हमारी बुद्धि में गूंजता रहता है, तो बड़े से बड़ी परिस्थिति भी वो खेल के समान अनुभव होती है। तूफान भी तोहफा बन जाते हैं, समस्याएं भी समस्या के समान बन जाती हैं। माना हर समस्या हमको समाधान रूप बनाने का कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, पाठ पढ़ा के जाती है, वो हमारे फायदे के लिए आती है। खुशी खुशी हमारा हिसाब किताब चुक्त हो जाता है, अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं। माना भगवान हमारा गुप्त रूप से इतना सहायक है, वो हमारी छत्रछाया बन के चलता है कि बड़े से बड़ी परिस्थितियां जो सूली से कांटा बन जाती हैं, हम सब ने अनुभव किया है कि हाँ, कई बार हम मलबेले हो जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमको एक्टिव कर देता है, चाहे वो परिस्थितियों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, या हमारे कोई ऐसा कर्म हमारे सामने आ जाता है जो हमको एकदम धक्का लगा देता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो गुप्त रूप से भगवान हमारी कदम कदम पर मदद करता आया है। सबने अनुभव किया है जैसे ब्राह्मण जन्म हुआ तो संसार का विरोध कितना हुआ, लेकिन उस विरोध का सामना करने की जो ताकत आई वो कहां से आई, वो किसी में उतनी ताकत नहीं थी जो अपने बलबूते पर आगे बढ़ सके। वो तो सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां एक कवच बनकर, हमारे सुरक्षा कवच बनकर, हमारी छत्रछाया बनकर हमको आगे बढ़ाती रही। इसलिए बाबा कई दफा कहते हैं बचपन के दिन बुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। जो भटकते थे, मन भटकता था, जो गीत में सुना, उस भटकते मन को जो सहारा दिया है, उस भटकते मन को जो एक मार्ग मिला है, सीधा मार्ग मिला है। जब तक मार्ग का पता नहीं होता तो इंसान भटकता रहता है, गलियों में भटकता है, लेकिन हम सबको सीधा हाईवे पर डाल दिया जहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, डर नहीं है। तो हमको क्या से क्या बना दिया। अगर हम इसका भी चिंतन करते रहें तो बाबा मिलन का जो अनुभव है बहुत अद्भुत, अलौकिक और एक शक्ति भरा रहेगा। किस कोने में थे, कहां थे, इतने वैरायटी धर्मों में जहां की नियम मर्यादाएं बड़ी सख्त होती है इस संसार के हिसाब से, लेकिन वो सब भगवान के प्यार के आगे ध्वस्त हो गई। इतना बड़ा संसार से लोहा ले लिया, टक्कर ले ली, तो बाबा ने आकर हम सबको पहले ज्ञान अमृत से हमारा स्नान कर दिया, जो कि हम दलदल में फंसे हुए थे। कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, एक छोटा सा सहारा मिलता है तो निकल आते हैं। तो हम सब तो बेकारों में डूबे हुए थे, छोटी सी एक बाल भी नहीं बचा था, बल्कि बाबा ने कैसे हो, हमारा एक छोटा सा भी पुण्य होगा, उस पुण्य की बदौलत भगवान ने हम सबको अपनी इस महायज्ञ के कार्य के योग्य समझ लिया। कितना उसका धन्यवाद करें, कितना उसका शुक्रिया करें। ये जीवन ही हमारा भी इतना अमूल्य है, इतना अनमोल बना दिया, कौड़ी मिसल था जो हीरे तुल्य बना दिया, क्या से क्या बना दिया। भक्ति मार्ग के धक्के थे, कितने धक्के खाए, भगवान को ढूंढने के लिए क्या क्या किया, लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी है वो अभी भी इस ज्ञान में बनी ही रहनी चाहिए। भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातें हैं जो ज्ञान मार्ग में भी हमको इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, लेकिन वो शास्त्र वाली नहीं, जो अंदर की भावनाएं हैं हमारे अंदर, जो भक्ति में भगवान के प्रति प्यार था, उसको ढूंढने की जो ललक थी अंदर, उससे मिलने की जो चाह थी, और मन में अंदर जो था कि वो जब आएगा तो हम क्या क्या करेंगे, अपने जीवन को कैसे सफल करेंगे, अपने जीवन को कैसा बनाएंगे, वो भगवान कैसा होगा, उसके प्यार का अनुभव कैसे करेंगे, तो वो सब प्रकार की भावनाएं भक्ति की इस ज्ञान मार्ग में होना भी अति आवश्यक है। नहीं तो ज्ञान जब स्पष्ट हो जाता है तो भावनाएं भी सूख जाती हैं, फिर जीवन में निरस्ता आती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो गीत हैं भक्ति मार्ग के वो सुनो, उन गीतों में ये भी कितना अच्छा गीत है, मुझको सहारा देने वाले। अभी आगे का गीत क्या है सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही लाइन में क्या हो, क्या से क्या हो, हमारे मन में विचार उठने लगते हैं कि सचमुच हम क्या थे और क्या बन गए। भक्ति मार्ग में कितना खर्च कर दिया हमने, तन मन धन सारी शक्तियां क्षीण हो गई, लेकिन उन सब धक्कों से हमको बाबा ने छुड़ा दिया। बाबा कहते हैं धोखेबाजों की दुनिया है, कितने धोखे खाए, कितनी ठोकरें खाई, लेकिन बाबा ने क्या बना दिया, ठाकुर बना दिया। रोज जो हमारी इतनी बड़ी पालना होती है वरदानों से, स्थूल पालना की बड़ी बात नहीं है। वैसे तो उस दिन बाबा ने कहा जो तन मन से भी स्वाहा हो जाते हैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, उस दिन वरदान था। लेकिन सबसे बड़ी समर्पणता जो वो मन की समर्पणता है, जिन्होंने मन से अपने जीवन को समर्पित कर दिया, वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो घरों में भी रहती हैं, हमने देखा है कई बार जो माताएं आती हैं सेवा में, उनके जीवन में इतना नशा रहता है, इतना नशा रहता है कि सेंटर के पास भी नहीं है, सेंटर से गीता पाठशाला से भी कितना किलोमीटर दूर दूर रहती हैं, लेकिन उनके जीवन में इतना ज्ञान समा गया है कि भगवान के प्रति इतना प्यार है, उसके प्रति इतना आदर है, सत्कार है, भावनाएं हैं इतनी ऊंच श्रेष्ठ हैं कि उनके अनुभव भी सुन के जैसे अंदर ही अंदर भगवान के प्रति प्यार उमड़ने लगता है। तो किस भी कोने में हम रहते हैं, उसकी कृपा तो हर जगह बरस रही है। तो आज का विशेष मिलन है, इस विशेष मिलन को अनुभव करने के लिए उसी प्रकार की हमारी भावनाएं भी बनी रहनी चाहिए। कौन आ रहा है, किससे मिलन हो रहा है, उससे क्या हमको प्राप्ति है, उसने हमारे जीवन में क्या हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया, कितना खुशबूदार बना दिया, जो हम कांटे थे, ना केवल दूसरों को चुभोते थे बल्कि अपने आप को भी कांटे चुभोते रहते थे। अपने आप को कांटे अर्थात हमारे विचार कैसे थे, हमारी दृष्टि कैसी थी, हमारी भावनाएं कैसी थी, हमारा व्यवहार कैसा था, संबंध संपर्क कैसा था, चाल चलन कैसी थी, सारा टोटली चेंज हो गया, खुशबूदार फूल बना दिया। बाबा कहते ना, मैं बगीचे में जाता हूं तो खुशबूदार फूलों को देखता हूं, वैसे भी जाएंगे तो नजर कहां पड़ती है, खिले हो गुलाब पर पड़ती है। तो आज भगवान भी उसी महफिल में आ रहा है, हम सब के ऊपर फिर से उसकी दृष्टि पड़ेगी, फिर से वो हमको वरदानों से भरपूर करेगा, फिर से हमारे में वो शक्ति भरेगा, ताकत भरेगा, हमारे जीवन को फिर से एक संजीवनी ब्यूटी सुंगा के हमारे जीवन को ऊर्जावान बना देगा वो। तो उसका अनुभव करने के लिए सबसे पहली बात है कि उसकी समानता, उसके जो रूप है उसकी समानता का हम सारे दिन में अनुभव करते रहे, अभ्यास करते रहे, बिंदु रूप का अभ्यास। क्योंकि उस किसी का भी हमको प्यार प्राप्त करना होता है तो उसके जैसा बनना जरूरी है। संसार में आशिक माशूक का प्यार होता तो क्या होता है, एक दो की बातों को मानते हैं। तो यहां भी बाबा कहते हैं प्रीत रीत मीत गीत, चार बातें जो कहती हैं, ये अशरीरी बनने का सहज साधन है, ये बिंदु बनने का सहज साधन है। प्रीत करना आसान है लेकिन फिर निभाना, उसमें फिर कंडीशन है। लेकिन वो भी बहुत आसान है अगर हम प्रीत को उसकी रीत अनुसार निभाते हैं। तो फिर सारे दिन में हमारे मन में गीत चलते रहने चाहिए। मुख से गुनगुनाने की बात भी ठीक है, लेकिन मन के अंदर ही अंदर जिससे प्यार होता है तो सारे दिन में हमारे विचार किसके प्रति चलते हैं उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसके बारे में हम 10 लोगों को बताते रहेंगे, उसी की महिमा करते रहेंगे, उसी का गुणगान करते रहेंगे। तो हम सारे दिन में मन के अंदर ही अंदर उसके गुणगान गाएं, उसकी महिमा करें कि उसने हमें क्या क्या दिया है जो सोचा नहीं था स्वप्न में भी कि इतना महान हमारा जीवन बन जाएगा। पूरे संसार को बदलने के लिए बाबा ने कहा ना, आज ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो नई दुनिया की स्थापना करता बना दिया हमको। हेवन जिसको लोग केवल स्वप्न प्रति समझते हैं, स्वप्न होगा था, लेकिन हम तो उसके मालिक हैं, विश्व के मालिक बनाने आया हुआ है, बैगर टू प्रिंस। तो कितना ऊंचा हमारा जीवन बना दिया उसने। जो हमारी दूरियां थी भगवान के प्रति, संसार में भक्ति में जो करते करते भगवान कितनी दूरियां हो गई थी हमारी, लेकिन सारी दूरियां खत्म हो गई, डिस्टेंस समाप्त हो गया। वो तो पल पल हमारे अंग संग गीत है ना, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, तो वो सचमुच अभी का तो गायन है ना, अभी हम उसका अनुभव करते हैं ना। तो आज सारे दिन में फिर से हमको वही अनुभव करना है, वही उन गीतों में खो जाना है, उन गीतों में अपने मन को रमण करते रहना है। संगीत भी एक साधना का अभिन्न अंग कहा जाता है, संगीत के लिए संसार में साधना करनी पड़ती है। तो हमारा जीवन ही संगीतमय हो गया है, हर कर्मेंद्रियों से भगवान की महिमा के गीत ही निकलते रहे, आंखें उसके प्यार में डूबी रहे, मन के अंदर वही सुंदर विचारों की उत्पत्ति होती रहे, मुख से उसके प्रति शुक्रिया निकलता रहे, उसके गुणगान निकलता रहे, अंदर ही अंदर वो चिंतन चलता रहे। तो जीवन ही हमारा संगीतमय हो गया है, जैसे उसकी दृष्टि पड़ेगी तो हमारा मन मयूर नाच उठेगा, रोमांच खड़े हो जाएंगे। बुआ कहते हैं जो प्रेम के आंसू अंदर ही अंदर उसके प्रति इतना प्यार उमड़ जाए, जो अनेक जन्म के हमारे विक्रम खत्म हो जाए। हम ये नहीं सोचे कि हम पूरे हमारे विक्रम खत्म हो गए, हमेशा हमको अपने लक्ष्य के प्रति, तब हम सतर्क रह सकते हैं जब हमको ये पता हो गया हमारे में कमजोरियां हैं, हमारे में कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां हैं जिनको हमको निकालने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए अभी गीत में भी था ना कि मैं हूं पुजारण तुम हो देवता, तो भक्त वाले जो लक्षण होते हैं एक सच्चे भक्त के, बाबा कहते हैं ना तुम सच्चे ज्ञानी भक्त हो, ज्ञान युक्त भक्त हो, तो वो हमारा उससे लिंक बना रहना चाहिए, तभी हमारा उसके प्रति प्यार रहेगा, मन से बार बार शुक्रिया रहेगा और तभी उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती रहेगी। तो इस बाबा मिलन का हमको सुख अनुभव करना है, तो सारे दिन में अशरीरी बनने का अभ्यास, बिंदु बनने का अभ्यास, और कौन सा अभ्यास, फरिश्ता बनने का अभ्यास, उसके पास आने जाने का अभ्यास, या उसको बुलाकर अपने आसपास अनुभव करने का अभ्यास करना है कि सचमुच वो मेरे आसपास ही है। जैसे कहते हैं ना कैमरा देख रहा है निगरानी, आजकल सुरक्षा के लिए लिखा होता है यहां आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो हम भगवान की आंखों रूपी कैमरे की निगरानी में हैं, वो हमको हर पल देख रहा है। अगर हम ये भी स्मृति में रखते हैं तो बहुत सारी हम आसुरी बातों से सेफ रहते हैं, जो भी हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर, अगर ये भी हमको स्मृति रहती है कि वो हमको देख रहा है, कि उसने हमको इस संसार को बदलने के कर्तव्य के लिए चुना है, इस संसार को पावन बनाने के कर्तव्य के लिए चुना है, इस संसार की आत्माओं के दुख हरने के लिए चुना है, तो हमको उस कर्तव्य के प्रति हम जागरूक रहेंगे, वो हम निरंतर एक हमारे अंदर इस अलौकिक कार्य करने की एक कृष्टि बनी रहेगी कि हाँ ये हमको करना है करना है करना है। जीवन में सुस्ती कब आती है, जब कोई काम नहीं होता है, हम भूल जाते हैं अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और जैसे जागरूकता होती है तो रात की नींद भी फिट जाती है। तो ऐसे हम अगर सोचें कि हमने, हमको भगवान ने किस लिए चुना है, हम क्या कर रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो हम सारा ही करते हैं, स्वयं के प्रति हमको सोचना है। इसलिए कदम कदम पर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। तो सारे दिन में उसका आह्वान करना है, फरिश्ता बनकर उसके पास जाना है, उसको अनुभव करना है, उसका स्पर्श करना है, उसके प्यार का अनुभव करना है, उसके वरदानी हाथ का अनुभव करना है, सारी शक्तियां वो हमारे में भर रहा है वो अनुभव करना है, हमको इस बॉडी से डिटैच कर रहा है। एक बहुत सुंदर और अभ्यास है जो हम कभी कभी करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि संकल्प कि मैं आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई हूं, ये संकल्प हमको देश डिटैच कर देता है। अब चली गई हूं कहां जाएगी, जहां उसका ठिकाना होगा, जहां उस आत्मा को कुछ प्राप्ति होगी, जहां उसका घर है, जहां उससे कोई रिलेशन है, जहां उसके साथ वही जाता ना मनुष्य, बुलावा आ गया है, अभी कोई बुला रहा है हमको, वो हमसे बातें करने के लिए आतुर है। तो सुंदर सुंदर हमको नए नए संकल्पों के साथ नए नए अभ्यास करते हैं, ताकि उसकी नई अनुभूति हमारे जीवन में होगी तो जीवन का मजा आएगा। नहीं तो अगर पुराने डर्रे पर चलते रहते हैं तो कई मिलन आए बाबा के और कई मिलन पूरे होके चले गए, लेकिन हमारे परिवर्तन का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो भगवान को भी दिखाई दे कि सचमुच कुछ तो हमारे श्रीमत पर ये बच्चे चल रहे हैं, थोड़ा सा भी चले दया तो उसको आएगी आएगी। लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे तो बन ही जाएंगे। बाबा ने कई दफा मुरली में कहा है, अमृत वेले योग नहीं लगता है कोई बात नहीं है, मन भटकता है कोई बात नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता कोई बात नहीं है, लेकिन उठ के बैठ जाओ, आ गया जिद से अनुभव की जिद करो, प्रेजेंट मार्क लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कोई अगर उठ के आता अमृत वेले तो वो ये सोच के नहीं आता है कि मैं अपने मन बुद्धि को भटकाऊंगा जाके, कोई सोचता है ऐसे कि मुझे नींद आएगी वहां, सोचता है ऐसे? इसी संकल्प के साथ उठते हैं कि मुझे शक्तिशाली अमृत वेला करना है, इसी संकल्प के साथ आते कि मुझे अच्छी तरह मिलन बनाना है, मुझे अपने बेकर्म विनाश करने हैं, विश्व को सागास देना है। हर ब्राह्मण आत्मा इन्हीं संकल्पों के साथ आंख खोलती है, लेकिन वो आगे जाके क्या होता, वो ये संकल्प नहीं सोचता कि अब तो मुझे नींद आएगी आज मैं उठना छोड़ दूं। कई बार अनुभव किया है अमृत वेले उठने की ताकत भगवान ही हमारे में भरता है, खटिया हिलाता है, सोने नहीं देता है, बार बार दो दो मिनट बाद जाग खुल जाएगी, शरीर की व्याधि होगी लेकिन वो आकर्षण अमृत वेले की भगवान हिलाएगा। क्योंकि हमारे से ज्यादा चिंता बाप को होती है, बच्चे का कल्याण किस बात में है। हम सोचते हैं कि हमको बीमारी है, उठेंगे दर्द होगा थोड़ा तो इसमें अकल्याण होगा, लेकिन भगवान को पता कल्याण इनका मेरी याद में ही है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी से बड़ी बीमारी है अपने को शरीर समझना, शायद कल आएगा मुरली में, अपने को शरीर समझना सबसे बड़ी से बड़ी बीमारी है। तो जब हम इन संकल्पों के साथ सोते हैं कि मैं शरीर हूं, तो सारा जो हमारी नींद है ना उसी के साथ आधारित होती है, और फिर हमारा चिंतन भी वैसे चलता है। लेकिन भगवान को पता है इनका कल्याण शरीर समझने में नहीं है, विदेही समझने में है, देही समझने में है। और कई बार फिर अनुभव भी करते होंगे कि अमृत वेले उठ के जाते हैं तो बाबा कैसे फुल चार्ज कर देता है, जो हमने लक्ष्य रखा होता है उस क्षमता से भी ज्यादा हमको चार्ज कर देता है वो, तो वो उसका प्यार है कि नहीं है, उसको पता है बच्चों का कल्याण किस बात में है। हम सोचते हैं इसमें कुछ ना कुछ दुख समाया हुआ है, नहीं, उसमें उस दुख के पर्दे के पीछे हजार गुना पद्म गुना सुख ही सुख समाया हुआ है। तो सारे दिन में हम सुख की बातों का चिंतन करें। कई दफा दादी रतमण जी कहते थे जब हम मिलते थे, बोले चेहरे पर खुशी क्यों नहीं होती है, आपके चेहरे मुस्कुराते क्यों नहीं है, देवताओं के चेहरे ऐसे होते क्या? तो योग हमको सीरियस बनाने वाला नहीं है, योग माना लक्षण है हमारे में, जो हमारे अनादि आदि स्वरूप के वो लक्षण हमारे में प्रत्यक्ष रूप से झलकने चाहिए, लाइट हैं, डबल लाइट रहने के हैं, हर्षित मुख रहने के हैं, रौनक वाला चेहरा है, देवताओं का मुरझाया हुआ चेहरा थोड़ा नहीं है। तो अभी हमको जो अगला स्टेप रखना है, अगला जो बर्थ है वो तो हमारा देवता ही है ना, लेकिन संस्कार तो अभी भरने ना। तो दादी कई दफा कहती थी, कई बार योग में कोई भाई बैठते तो उनको योग के बाद बुलाती थी, क्या हुआ योग में, मुरझाया वो क्यों था? तो बोला दादी योग में खोई हो नहीं तो चेहरा हर्षित मुख क्यों नहीं था। बोला चेहरा ऐसा क्या करे। तो हमारा जो है बाबा, हमारे अंदर वो ऊर्जा भरता है, वो शक्ति भरता है, हमारे जो चेहरे के हाव भाव वो परिवर्तन हो जाते हैं जब हम उसकी मत का पालन करते हैं, उसकी श्रीमत को अपने जीवन में उतारते हैं, आत्मसात करते हैं, तो उसकी पालना का अनुभव, मिलन का अनुभव वो होता रहता है। तो बाबा मिलन के लिए हमको बड़ा प्रेम से सारे दिन में ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। मुरली में बहुत सारी पॉइंट होती हैं, आज की मुरली में कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, है ना। पहले मीठे बच्चे में एक ही सेंटेंस में सारी मुरली का सार समाया हुआ है कि कितना टाइम दुख में व्यतीत कर दिया सहन करने में, अभी सहन नहीं करो, बाबा कहते शहनशाह बनो। अभी बाबा कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं तुम बच्चों को आज की मुरली में? मोहजीत बनने का है जी, कुर्बान जाना है एक बाप पर। हाँ तो हमारी कुर्बानी कहीं कहीं हटक तो नहीं रही है, वो देखना है क्यों कुर्बानी पूरी तरह से नहीं हो रही है। उधर भी लड्डू इधर भी लड्डू दोनों हाथ से पकड़े तो नहीं, पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हम, लड्डू तो एक ही हाथ में रहेगा, इस लड्डू को पकड़ेंगे तो संसार के सारे लड्डू हाथ में आ जाएंगे हमारे, परछाई की तरह सफलता आएगी। बीज को पकड़ लो तो सारा वृक्ष अपने हाथ में है। तो उसी तरह परमात्मा बीज है, वो बीज रूप बाप के साथ अगर हमारा कनेक्शन है तो सारे संसार के साथ हम जुड़े हुए हैं। बाबा कहते तुम बच्चे पूर्वज हो, तो जो पूर्वजों के कर्तव्य हैं वो हमको अगर स्मृति में रहेंगे तो भी हमारा जो जीवन है बहुत श्रेष्ठ ऊंच पवित्र बन जाएगा, तो भी हम मिलन का सुख अनुभव करते रहेंगे। तो जो भी अभी मिलन की जो विधियां बदलती जा रही हैं, इन विधियों के आधार पर हमारे जो विश्व परिवर्तन के या स्व परिवर्तन के कर्तव्य वो भी बहुत सूक्ष्म होते जा रहे हैं, तो हमको इसके प्रति पूरा जागरूक रहना है। इस मधुबन के वायुमंडल को, क्योंकि बाबा कहते हैं मधुबन की सुई की आवाज भी पूरे विश्व में गूंजती है वो, तो हमारा सबका दायित्व है कि वर्तमान समय हमको इतना शक्तिशाली अपने आप को भी बनाना है, इस वातावरण को भी बनाना है, संसार के वातावरण को भी चार्ज करना है, तो इस दायित्व के प्रति हम जागरूक रहें। छोटा छोटा भी लक्ष्य रख करके अपने आप को चार्ज करें, ब्राह्मण आत्माओं को इमर्ज करके, बाबा का आह्वान करके, उसका वरदानी हाथ ना केवल अपने सिर पर बल्कि ऐसा अनुभव करें कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ सब ब्राह्मण आत्माओं के सिर पर रखा हुआ है, सब ब्राह्मण आत्माएं फुल चार्ज हो रही हैं, सब ब्राह्मण आत्माएं अनेक 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 जन्मों के विघ्नों से मुक्त हो रही हैं, उनके विक्रम भस्म हो रहे हैं, उनके दुख दूर हो रहे हैं, उनका मार्ग जो सरल हो रहा है, उनका चित्त सरल हो रहा है, वो संपूर्ण पवित्र हो रही हैं, उनमें देवता लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वो फरिश्ता बन रही हैं। तो न केवल अपने प्रति, जिस सुमान का हम अभ्यास करते हैं उसी सुमान से हम दूसरों को हम देखें, ऐसे नहीं हम सोचें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ स्वयं है, तो सबको उसी दृष्टि से देखना है, तो सबके प्रति एक समान प्यार होगा। ये कई बार हम अनुभव भी करते हैं कि अगर हम बड़ा ऊंचा सम्मान ले लिया और सामने वाले को हम ऐसे समझते हैं तो वो सम्मान हमारा काम नहीं करता इतना, उसमें फिर दूरियां रहती हैं। हम एक ही बाप के बच्चे हैं तो एक सरीखे होने चाहिए ना, एक ही सांचे में ढले हुए हैं, तो जिस सम्मान में हम रहते हैं, जैसे हम बाबा समान विश्व कल्याणकारी हैं, तो हम उसी दृष्टिकोण से सबको देखें, तो उस विचार की उत्पत्ति सारे ब्राह्मण आत्माओं के मन में वो पैदा होगी वो, नहीं तो हम ऊंचे सम्मान में और सामने वाले को देख रहे हैं तो ऐसे ही है, नहीं सब ऊंचते ऊंचे। परिवार की भावना अर्थात क्या है, सब उंगलियां एक बराबर, एक ही हाथ की उंगलियां हैं, उनको काटेंगे थोड़ा नहीं, उनकी पूरी मलम पट्टी करेंगे ना, कितना देख रेख करते हैं उनको, सब उंगलियों के नाखून काटेंगे, सबकी साफ सफाई करेंगे, तो हम ब्राह्मण परिवार एक हाथ की उंगलियां हैं, तो उनकी भी साफ सफाई, उनकी स्वच्छता, उनकी देख रेख केयर वैसी होनी चाहिए ना। जो हमारे अंदर से कूड़ा कचड़ा निकल रहा है वो ये सोचना कि सबके अंदर से वो खत्म हो रहा है। सभी उसी ब्राह्मण परिवार के हैं जिस ब्राह्मण परिवार का मैं भाती हूं, एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही वृक्ष के हैं हम, हैं जी, चंदन के वृक्ष के हैं, खुशबूदार फूल हैं, सबको खुशबू देने वाले हैं। तो ऐसे मिलन की नई नई विधियां या चिंतन को परिवर्तन करने की जरूरत है। हाँ, जैसे हमको कैसे इस तिथि की प्रतीक्षा रहती है, भगवान को बेताबी रहती है ना, बच्चों को, बच्चों के साथ साथ भगवान बाप को भी तो कितनी बेताबी रहती है। मेरा बच्चा आएगा, कमाने गया हुआ है विदेश में, है ना, उसको कितना आश रहती है। तो भगवान को भी आश है ना, आज मेरे बच्चे फिर से मिलेंगे। वो दिन बताया था ना मुरली में, संडे की, परसों की मुरली में, कि भगवान की दृष्टि में क्या है, पूरी सृष्टि समाई हुई है। वो आत्माएं भी हैं जो सामने साकार में नहीं है लेकिन उसकी दृष्टि में समाई हुई है। इसी तरह से हमारी दृष्टि की सृष्टि में भी हर ब्राह्मण आत्मा समाई रहनी चाहिए। बाबा ने एक मुरली में, कई मुरली में कहा हुआ है, हमेशा ये समझो कि सारे विश्व की आत्माएं हमारे मस्तक के आगे घूम रही हैं। हमेशा उन आत्माओं को अपने मस्तक के आगे इमर्ज करके रखो। तुम इस सृष्टि के पूर्वज हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, सबका कल्याण करने वाले हो, सबका बेड़ा पार करने वाले हो। तो अगर हम अपने बेड़े को पार नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को कैसे करेंगे। मान जो हम कर रहे हैं वो सब हो रहा है अपने आप। इसलिए बाबा ने कहते हैं आपके संकल्प का, संकल्प के भी वाइब्रेशन पूरी सृष्टि को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारे संकल्प किस स्तर पर चल रहे हैं, निम्न स्तर के हैं या मध्यम स्तर के हैं या उच्च कोटि के हैं, संकल्पों से सृष्टि का निर्माण। तो बीज हमारे जो परिवर्तन, पुरुषार्थ के परिवर्तन का आधार है, जीवन के परिवर्तन का आधार है या पुरुषार्थ का आधार है, वो है हमारे संकल्प। संकल्प रूपी बीज हमारे शक्तिशाली हैं तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। संकल्प जब हम कमजोर कर लेते हैं तो फिर वैसा ही होता है। उन संकल्पों को शुभ भावनाओं का पानी देना है, श्रेष्ठ भावनाओं का पानी देना है, उनको जल से सींचना है, उनको खाद देनी है, ज्ञान की खाद देनी है, अच्छी अच्छी योग की धूप देनी है। तो समय समय पर उन संकल्प, इसलिए बाबा कहते हैं ना, ज्वारी होता था क्या करता है, रोज अपने माल को देखता है या नहीं है, उसको फिर साफ सफाई करता है, उसको डब्बे में रखता है। ऐसे हमारे संकल्प भी, एक एक संकल्प हमारा हीरे समान है। बाबा कहते हैं उन संकल्पों को दोहराओ। हाँ, आज की मुरली में हीरे की बात भी कही बाबा ने। हाँ, हीरे को काटने वाले को बहुत पेमेंट मिलता है। तो हमारे संकल्प हीरे तुल्य संकल्प हैं। वो संकल्प के साथ अगर कोई दूसरा ऐसा वैसा संकल्प जुड़ा हुआ है तो उसको काट देने का है। तो हमारे संकल्प स्वच्छ रहे, उच्च कोटि के रहे, पवित्र रहे, महान हो, कल्याणकारी हो, बाप समान संकल्प हों। तो संकल्पों की उत्पत्ति श्रेष्ठ है तो रचना जरूरी है कि वो श्रेष्ठ ही होगी। तो सारे दिन में बाबा से मिलन मनाने के लिए हमको चिंतन करते रहना है अपने अपने स्तर पर, क्योंकि सबकी मन की विचारधारा अपनी अपनी होती है। लेकिन कर्म क्षेत्र भी हमको जो भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिले तो अपने विचारों को ऊंच ऊंच बनाना है, उसका आह्वान करना है, उसकी छत्रछाया में रहना है। हाँ, एकांत में खो जाना है, एक के अंत में, और एकांत अर्थात जहाँ भी जिस भी स्थान पर है तो वहीं हमको एकांत का अनुभव करना है, मन से एकांत। ऐसा नहीं है कि हमको इस स्थान की हम वो स्थान मिले, बच अच्छी बात है वो भी, लेकिन जो घर में रहते हैं उनको थोड़ा मिलेगा स्थान। वो अपनी खटिया को एकांत बना लेना है। कई तो बेचारे एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कमरे में चार चार लोग हैं तो उनको एकांत कहाँ मिलेगा। लेकिन हाँ, एक ही कान से सुनो, एक को ही सुनो तो कान ना कटवाना ना पड़े बाद में, तो अपने कानों से वही सुनना है जो वो सुना रहा है, ताकि अंत में वो सजा ना खाएं, बल्कि हम सज धज कर उसके साथ जाएं। बाबा की सजनी है। आजकल हेडफोन है कान बंद करने के लिए। कई तो अच्छे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, बहुत अच्छा होता है, कुछ भी कहते रहो उन सुनाई नहीं देता है। इधर थे माता जी, एक सुनाई नहीं देता, कुछ भी बोलते रहो, अपनी मस्ती में मस्त है, पास में कुछ भी हो रहा है तो इसका भी उन्होंने फायदा उठाया। वो सुनते थे जोर से, हैं अपनी मस्ती में मस्त रहे, पढ़ रहे हैं। बिमला माता जी थे हमारे, सुरेश गर्ग जी के युगल, तो यहाँ आते थे, कितनी उनकी लगन थी। डॉक्टर कोमद हैं इस एज में, चलना भी कितना मुश्किल होता है, लेकिन क्या उनमें लगन है, क्या पुरुषार्थ के प्रति वो ललक है, जज्बा इतना यूथ में भी नहीं देखा हमने, पढ़ाई के प्रति। वो लिख, कई बार लिखने के लिए भी उनको इतनी ठंड हो रही है, फिर भी उठ के 3 बजे वो अगर चलना भी नहीं हो तो पुकार रहे हैं, ए मुझे छोड़ के आओ इस तैयार में, सवेरे सवेरे की बात बताओ, वंडरफुल। हाँ कुछ भी हो, बाबा के रूम में जरूर, कितनी मर्जी बरसात हो, और इन सुबह उठना, अपने आप को तैयार करना उस एज में कितनी बड़ी बात है। वो तुम्हारे लिए एक ब्राह्मण आत्मा कितनी एग्जाम्पल है, सैंपल है। संडे के मुर्दे में एक बहुत सुंदर टाइटल मिला था, कौन सा, सैंपल। बाबा ने कहा तुम स्वर्णिम दुनिया के सैंपल हो। जब सैंपल को कोई देखता है तो अपने आप पता चलता है, हाँ ये तो अभी दुनिया आएगी आएगी, ऐसा हम बन सकते हैं, क्योंकि सैंपल सामने दिख रहा है। तुम स्वर्णिम दुनिया के सैंपल हो। तो कुल मिलाकर तो यह है कि बाबा मिलन का हमको भरपूर फायदा लेना है, अनुभव करना है, बहुत सुख अनुभव करना है, उसके प्यार में सारे दिन में खोए रहना है, मनन चिंतन में लगे रहना है, जहां हम जा रहे हैं बाकिंग टाकिंग गीटिंग जो भी कर रहे हैं उसका अंदर ही अंदर हमारे चिंतन चलता रहे, क्योंकि सारी सूक्ष्म प्रक्रिया अंदर ही अंदर, अंदर से हमारे आंतरिक संसार में हमारे क्या हो रहा है वो हमको पता होता है, भले कई बार दूसरे कुछ भी दृष्टि वृत्ति से देख रहे हैं, क्योंकि सबका दृष्टिकोण अपना अपना है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है वो हमारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा, तो वाइब्रेशन हमारे स्वतः काम करते रहेंगे। तो सारे दिन में हमको ऐसा वाइब्रेशन लाना है कि सारे ब्राह्मण संसार को परमात्म प्यार में डुबो के रखना है। हाँ सारे दिन में हमको एक ही संकल्प रहे, आज बाबा का दिन है, उसके मिलन की अनुभूति हमको अनुभूति में खोए रहना है हमको। अच्छा ओम शांति।
तेरा शुक्रिया हो मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो देना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, जब से हुआ है हमसे तेरा करम, मुझको सहारा देने वाले ये दिन में।